vision maléfique.
Des interviewés
et aussi des crottes de nez.
Des thèmes variés.
De l'absurdité.
De l'absurdité.
De l'absurdité.
Des portraits. Un soupçon d'actualité.
Une louche de solidarité.
Des reportages bien montés.
Vous écoutez Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Et aujourd'hui, c'est le premier volet d'une trilogie qui va s'appeler I comme international, culture de résistance dans les pays en I. Et tout de suite, on écoute le jingle qui annonce la trilogie.
Lulith, Martine et les autres vous présentent la trilogie I comme international. Culture de résistance dans les pays en I. Le 2 octobre, l'Inde, le féminisme dans une société de caste. Le 16 octobre, l'Irlande, du côté des indépendantistes. Le 27 novembre, l'Italie, ses chants populaires, révolutionnaires et féministes. I comme international, culture de résistance dans les pays en I. Une trilogie par Lily, Martine et les autres sur Radio Canu 102.2.
Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver ce soir sur la Radio Cani. Et ce soir, dans cette émission, nous allons vous parler de la culture des résistances en Inde, notamment à travers de l'ite féministe. Et c'est Bijou qui vous parle au microphone et je ne suis pas seule, comme d'habitude, dans ces studios. Je suis avec Annie-Claire et Lissy, à qui j'ai dit bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et ce soir, dans cette émission, nous allons recevoir pour vous Naïke, notre invitée de ce soir, qui va nous parler sur l'Inde. Bonjour, bonjour. Naïke. Et on va rappeler quand même que tu es journaliste et spécialiste de l'Inde.
Tu descends directement de la capitale.
Je ne sais pas si on peut être spécialiste à un si grand pays, parce que je ne suis pas encore allée voir tout ce qui se passe là-bas. Mais en tout cas, j'aime bien m'intéresser aux résistances, et notamment aux résistances chez les femmes là-bas. Voilà.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Naïke, du contexte politique actuel en Inde ?
Oui, bah en deux mots, on a depuis presque deux ans un gouvernement d'extrême droite au pouvoir, le gouvernement de Narendra Modi. On les appelle aussi les ultranationalistes. Et leur spécificité, c'est donc de penser que la culture hindoue est la culture qui doit être dominante et qui doit représenter tous les Indiens, alors qu'on a en Inde une diversité, notamment de religion, avec 14% de la population qui est musulmane et qui se retrouve directement attaquée par un gouvernement donc qui ne pense que par la religion hindoue, la culture hindoue. Et puis c'est donc un gouvernement qui attaque aussi les plus défavorisés, donc ceux qui sont en bas de l'échelle.
Hambaruni, Hambaruni vasarale chatte zavagaya. Pita madi, pani takun male pazit zaya.
जरी मी उजेडात देवाचं काम करत असले तर अंधारात मी माझ्या सगळ्या मुलांना सहकार्य देते. एवढंच नाही पण माझ्या मुलांना इथून पुढं काय होईल त्याची सुद्धा मी माझ्या मनाची तयारी ठेवलेली की उद्या जर ते कार्यक्रमाला उभं राहिले त्यांना जर काय घात झाला तर कोणतीच आई सहन करू शकत नाही. माझ्या मुलांकडून जर जगाला किंवा देशाला काय मदत होईल हीच माझी अपेक्षा. मी ज्या धर्मात गेले त्या धर्मात माझे लेकरं नाही जावं.
Il compose, il fait aussi de la musique, il joue donc des instruments, il chante aussi. Donc tous ces différents moments de la musique, ils sont incarnés par le shairi. Et ça, c'est une forme de musique qui vient de l'époque de Shivaji, qui était un chef indien qui s'est battu contre la colonisation moghole, contre les invasions moghols. Et à ce moment-là, il fallait que toute la population se batte contre les envahisseurs. Donc le shairi, c'était le messager, celui qui transmettait le message de la révolution, de la résistance. Donc il allait de village en village, il allait chanter la résistance pour que les gens se sentent inspirés et rejoignent le combat. C'est une tradition de chants révolutionnaires qui nous vient de ce moment-là, et c'est des chants qui doivent entraîner la population à s'organiser, à se regrouper pour résister. Et dans ces chansons, il y a souvent un message social, un message à destination des classes populaires. Donc il y a toujours eu le lien entre la chanson et le combat pour une cause juste. Et pour produire ce qu'on peut appeler un mouvement de masse, une mobilisation.
शायरी ही लढणाऱ्या लोकांना इन्स्पायर करण्याच्या उद्देशाने जन्माला आलेली गोष्ट आहे. म्हणजे
संपविला देह जरी संपणार नाही मती, धर्माचा गार ध्यानो कशी रोखणार गती.
धर्माचा गार ध्यानो कशी रोखणार गती.
आठवा चारवा काला तुम्ही भस्म केले होते, नाव इतिहासातून लुप्त झाले होते. त्याच चारवाकाचे तुम्हा वारस आज दाऊ किती. धर्माचा गार जानो कशी रोखणार गती. आठवा तुकोबाची गाथा तुम्ही बुडविली, तुका मारुनिया त्याची खबर दडविली. त्या तुक्याच्या अभंगाची आज तुम्हा वाटे भीती. धर्माचा गार ध्यानो कशी रोखणार गती. भिक्कूंच्या शिराला दिल्या मोहरा शंभर, कसा रक्तान भिजविला अहिंसेचा तो संगर. गळे चिरुनी धम्माचे संपली का सांगा नीती.
धर्माचा गार ध्यानो कशी रोखणार गती.
सत्य चिरडून इथ धर्म वाढलाय, फुल्यांसाठी मारे करी त्यांनी धाडलाय. गांधीजींचा धर्मांदानी खून पाडलाय, गोळ्या झेलुनी या पाश निपचित पडलाय. न्यायासाठी भोत मागे रोज रडलाय, रक्ताच्या थारोळ्यात सफदर पडलाय. त्याच सत्यासाठी आज दाभोळकरांची आहुती. त्याच सत्यासाठी आज पानसरेंची आहुती. धर्माचा गार ध्यानो कशी रोखणार गती.
धर्माचा गार ध्यानो कशी रोखणार गती.
मनुचा कायद्याची दहशत फार होती अज्ञानाचे होते राजा सप्तबंदी होती कोसला जातीचा डोलारा अघोऱ्या त्या रीती कोसला जातीचा डोलारा अघोऱ्या त्या रीती आला प्रज्ञा सूर्य भीम आला प्रज्ञा सूर्य भीम जाळून टाकली मनू स्मृती धर्माचा गार जानू
कशी रोखणार गती
दाभोळकरांच्या आणि पानसरेंच्या खुन्यांना सरकार पकडू शकत नाही एवढी मोठी यंत्रणा आहे सगळे त्यांचे गुप्तहेर खाते आहेत नॅशनल इंटरनॅशनल दाभोळकरांच्या आणि पानसरेंच्या हत्याकारांना पकडू शकत नाही पण हे सरकार दाभोळकरांचं आणि पानसरेंचा वारसा चालवणारे जे कलाकार साहित्यिक आहेत त्यांना मात्र तुरुंगात हे सरकार ठेवू शकतं त्यांना जामीन मिळू नये त्यांच्यावरचा खटला अधिक चांगल्या पद्धतीनं कडक व्हावा ह्याची जबाबदारी ह्याची खातरजमा हे सरकार चांगलं करू शकतं पण पुरोगामी पुरोगामी म्हणून ओरडणाऱ्या महाराष्ट्रात हे सरकार दाभोळकरांची आणि पानसरेंची हत्येकरी पकडू शकत नाहीत सत्यासाठी सॉक्रेटिस विष प्याला होता कोपरनिकस वरती पोपचा रोष आला होता मार्टिन ल्यूथर धर्म द्रोही ठरला होता गॅलिलिओ बघा तुरुंगात सडला होता बघा उजेडाची फुल धडका मरणाला देती धर्माचा गार जानो कशी रोखणार गती तुम्ही उजेडाची फुल खुडली किती सांगा धर्म क्रौर्याचा तुमचा हिशेब आज मांडा अंधाराला घेऊन आमचा उजेडाशी भांडा अंधाराला घेऊन आमचा उजेडाशी भांडा अज्ञानाचा होईल अंत असत्याची होईल माती धर्माचा गार जानो कशी रोखणार गती
फिर मैं ज्वाइन हो गई और बाद में रमेश गायचोर जो
ensuite j'ai rejoint le groupe et j'ai rencontré Ramesh et là nous avons débuté une relation nous ne nous sommes pas mariés car nous ne croyons pas au mariage
हां रिलेशन में हूं उनके साथ और जब तक विश्वास है एक साथ रिलेशन में रहेंगे
quand il y a une relation de confiance entre les deux pas besoin de mariage
jail mein abhi ramesh hai na
Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Ramesh est en prison, mon copain, et au début, il me refusait le parloir car je n'avais pas de preuve de mariage. Il ne nous laissait pas nous rencontrer. Le gardien ne me laissait pas entrer car je n'avais pas le certificat. À la maison aussi, c'est un problème. Ma famille m'embête car je n'ai pas de papier de mariage. Mais je leur ai déjà dit que lorsqu'on croit en la relation, on peut être ensemble. C'est comme ça. Mais je ne vis plus avec mes parents. Ils ne veulent plus me voir, surtout à cause des arrestations. Et en plus, je suis avec quelqu'un qui n'est pas de la même caste.
Intercaste,